HD Smartcast.
You are listening to an HD Smartcast original.
इस एपिसोड को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। जब आप मेटावर्स सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? मेटावर्स शायद, या हो सकता है कि फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ने अपने आप को रीनेम करा मेटा। या अगर आप एक गेमर हैं तो मेटा से आपको समझ आता है कि एक एक्रोनियम है। इसका मतलब होता है मोस्ट एफिशिएंट टैक्टिक अवेलेबल। जी हाँ, तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रिपेयर फॉर न्यू मेटा, यानी प्रिपेयर फॉर न्यू मोस्ट एफिशिएंट टैक्टिक अवेलेबल। इसका मतलब क्या है? पिछले दो एपिसोड्स में मैंने एक चीज पे कॉन्टिन्यूसली रीएम्फेसाइज करा है कि काफी सारे डार्लिंग कॉइंस नेक्स्ट रन में शायद अपने ऑल टाइम हाई को बीट नहीं कर पाएंगे, और बेयर मार्केट इज द टाइम जहां बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स निकल कर आते हैं। तो बेयर मार्केट में जो नए प्रोजेक्ट्स निकल कर आएंगे, इन नए प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, इन नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, एंड एट द सेम टाइम पुराने प्रोजेक्ट्स को रीवैल्यूएट करना और फिगर आउट करना कि उनमें से किसके सर्वाइव के चांसेस कम हैं या ज्यादा हैं, ये सारी चीजें मेटा के अंदर काउंट की जाती हैं। तो हो सकता है कि अगली बुल मार्केट के बेस्ट प्रोटोकॉल्स अभी ही क्रिएट करे जा रहे हों, या अभी उनकी डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूएशन में हो जब से वो स्टार्ट हुए हैं। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि मेटा ढूंढना थोड़ा सा एक एक्टिव इन्वेस्टर का ट्रेड है। तो अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है तो ये एपिसोड आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्किप करने की जगह आप इसे सुने, क्योंकि आपको शायद ऐसे कुछ इनसाइट्स मिलें जो आपको ओवरऑल इन्वेस्टिंग में हेल्प करें। तो मेटा के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं उनके अंदर आपको कुछ बेसिक्स आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करने हैं। इसको ऐसे सोचते हैं कि 2021 में कौन से सेक्टर्स ऐसे थे जो काफी लाइमलाइट में रहे। ये सेक्टर्स थे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, GameFi यानी गेम फाइनेंस, NFTs, मेटावर्स। ये चार सेक्टर्स टॉप पे रहे थे थ्रू आउट द ईयर, और इन चारों सेक्टर्स के अंदर मिनी सेक्टर्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर आप हर एक सेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं और उनके मिनी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो शायद आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पैटर्न आपको काफी हेल्प करेगा समझने के लिए कि कैसे इन्वेस्टिंग की जा सकती है। तो ये पैटर्न को बेसिकली हम कहते हैं बिल्ट टू लास्ट या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एक सेक्टर को पकड़ते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मान लीजिए इकोसिस्टम्स की या लेयर वंस की या NFTs वगैरह की। तो अगर हम DeFi पे चलें, क्योंकि DeFi मेरा फेवरेट है तो आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा बायस्ड हूँ DeFi को लेके, बट अगर हम DeFi पे चलें तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से DeFi प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उनके कोई अच्छे कंपटीटर्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि बेयर मार्केट काफ़ी हॉरेबल होती है, बट ये बहुत हेल्दी होती है एक अच्छे इकोसिस्टम के लिए, और इकोसिस्टम का सारा डेड वेट बेयर मार्केट अपने साथ ले जाती है। और इसके बाद जो बचते हैं वो प्रोजेक्ट्स बचते हैं जो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट, डेवलपमेंट और टीम के साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ DeFi का एक आउटलुक देने के लिए। DeFi में आप इकोसिस्टम को एक एडवेंचर पार्क की तरह सोच सकते हैं। अभी अगर आप एडवेंचर पार्क गए हैं, और खास तौर पर अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, तो आप वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, स्प्लैश या ये सारे एडवेंचर पार्क्स में गए होंगे। किसी भी एडवेंचर पार्क में सबसे पहले एक एंट्री डोर होता है जहां पे आप कुछ अमाउंट पे करते हैं एंड फिर एडवेंचर पार्क में एक टिकट बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टिकट को हम बोल सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन, यानी एक ऐसा लेयर वन जिसका अपना पूरा इकोसिस्टम है। तो सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं तो आप वहां पर कुछ रुपए अदा करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको टिकट मिलती है। सिमिलरली बाइनेंस स्मार्ट चेन में एंटर करने के लिए आपके पास BNB होना चाहिए, जो बाइनेंस कॉइन है और बाइनेंस स्मार्ट चेन की नेटिव करेंसी है। यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे मोस्टली जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो BNB पेयर के साथ होती हैं। अब जब आप एक एडवेंचर पार्क में एंटर करते हैं, वहां पर अलग अलग टाइप की राइड्स होती हैं, वाटर राइड्स, एरियल राइड्स, एडवेंचर राइड्स एटसेट्रा। बेस्ड ऑन योर चॉइस, लाइकिंग एंड प्रेफरेंस, आप अपनी राइड्स चूज कर सकते हैं। सिमिलरली एक इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप वो प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लास्ट ईयर जैसे पैनकेक स्वैप वॉज द फर्स्ट टेक्स जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर आया, और यहां पर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते थे बिकॉज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का कोर ही लिक्विडिटी के ऊपर होता है। तो अगर आप एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं तो यू कुड अर्न केक टोकन्स एज अ रिवॉर्ड। इसको हम यील्ड फार्मिंग भी बोलते हैं और यहाँ से आपको एक अच्छे APR भी मिल सकते थे। बट क्योंकि पैनकेक स्वैप वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट, तो ये इकोसिस्टम का एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं था। और यहाँ से एक प्रॉब्लम निकल कर आई कि पैनकेक स्वैप पे जो रिटर्न्स मिलते थे वो मैनुअली कंपाउंड करने पड़ते थे और यहाँ ऑटो कंपाउंडिंग नहीं थी। यहाँ से निकल कर आए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो ऑटो कंपाउंडर्स भी थे या इंडिपेंडेंट ऑटो कंपाउंडर्स जैसे कि बीफी। तो बीफी फाइनेंस एक ऐसा ऑटो कंपाउंडर है जो करेंटली बाइनेंस स्मार्ट चेन में सबसे बड़ा ऑटो कंपाउंडर है। इसके अंदर करेंटली ओवरऑल इकोसिस्टम में 400 मिलियन का TVL है। बीफी क्या करता है? बीफी ये करता है कि जो आपके रिवॉर्ड्स होते हैं उसको आपके लिए ऑटो कंपाउंड करता है और वापस लिक्विडिटी पूल में ऐड कर देता है। तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाते हैं और आपको मैन्युअली बटन्स प्रेस करने की नीड नहीं है। ये काफ़ी अच्छा सेट एंड फॉरगेट ऑप्शन है पैसिव फार्मर्स के लिए जो लॉन्ग टाइम फार्मिंग करना चाहते हैं। तो बीफी वॉज द सेकेंड प्रोडक्ट जो इकोसिस्टम के अंदर आया। अभी जब आप बीफी देखते हैं तो बीफी के अंदर नॉर्मली 0% डिपॉजिट फीस होती है, 0.1% विड्रॉल फीस होती है। एंड यहाँ से लोग काफ़ी खुश थे और लोगों ने इनको नाम दिया यील्ड ऑप्टिमाइजर्स या वॉल्ट्स का भी। इसके बाद हमारे पास अंदर आए लॉन्च पैड्स एंड प्री सेल पैड्स जैसे कि DX सेल, यूनिक्रिप्ट, जहां पर आप अपनी प्री सेल्स को लॉन्च कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं एंड फंड रेज कर सकते हैं। इन्हें मैं बोलता हूं एरियल राइट्स की तरह, क्योंकि ज़्यादातर सारे लोग यहां जाते हैं मस्त एरियल राइड लेने के लिए, बट ना डेस्टिनेशन पता होती है ना पैराशूट होता है, तो वो सीधे धड़ाम से नीचे गिरते हैं और काफ़ी लॉस खाते हैं। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी सारी प्री सेल्स ऐसी होती हैं जो स्कैमर्स रन करते हैं या फेक टीम्स रन करती हैं और वो इवेंचुअली रग पुल भी होते हैं। तो अगर आप एक एरियल राइड के लिए जाना चाहते हैं तो डेस्टिनेशन बता करके जाइए, उस कंपनी के बारे में बता करके जाइए, और पैराशूट तो 100% साथ में कैरी करना बनता ही बनता है। अभी बाइनेंस स्मार्ट चेन इकोसिस्टम के अंदर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आया वो था 1 इंच, विच इज़ अ DeFi एग्रीगेटर। ये आपको बताता है कि बेस्ट रूट कौन सा है ट्रांजैक्शन के लिए एंड काफ़ी फीस बचाने में भी हेल्प करता है। मैं आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। जब आपको अपनी फ्लाइट टिकट बुक करनी होती है तो आप 10 अलग अलग साइट्स पर जाके प्राइस कंपैरिजन करते हैं, राइट? इसके लिए काफ़ी लोग स्काई स्कैनर यूज़ करते हैं जो आपको बेस्ट साइट विद द बेस्ट कूपन कोड बताता है। 1 इंच भी बिल्कुल वैसा ही है। जब आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है आप 1 इंच पर जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 1 इंच बेस्ट रूट फिगर आउट करता है, बेस्ट एक्सचेंज फिगर आउट करता है विद लोएस्ट फीस एंड आपको काफ़ी सेविंग्स करने में हेल्प करता है। ये गाइड की तरह मान सकते हैं, यानी जब आप एक एंटरटेनमेंट पार्क में जाते हैं तो गाइड आपको सारा रूट बताता है। ये बताता है कि कौन से पैकेज में आप मोस्ट नंबर ऑफ राइड्स विद लोएस्ट अमाउंट ऑफ फीस ले सकते हैं। अभी 1 इंच एग्जैक्टली वही काम करता है। देन आते हैं यील्ड हंटिंग जोन्स जैसे कि लिक्विड ड्राइवर, जो हालांकि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे नहीं है बट इसके एक ऑल्टरनेटिव फैंटम चेन के ऊपर है, जहां पर आप यील्ड को हंट कर सकते हैं और टॉप डेक्सेस के हिसाब से ये सारा क्यूरेशन करके देता है। तो इसको भी आप एक गाइड की तरह सोच सकते हैं जो गाइड आपको बताता है कि इस वाटर पार्क में अगर 100 राइड्स हैं तो बेस्ट 5 या बेस्ट 10 राइड्स कौन सी हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इंक्यूबेटर्स एंड लॉन्च पैड्स जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस के लिए होते हैं। यहां से प्रोजेक्ट्स इंक्यूबेट होते हैं, उन्हें इनिशियल फंडिंग मिलती है और उन्हें इनिशियल एक पुश और बूस्ट मिलता है। एंड फाइनली हमारे पास आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को आप समझ सकते हैं कि वाटर पार्क में जैसे छोटे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स जाते हैं, सिमिलरली किसी भी DeFi इकोसिस्टम के अंदर इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंश्योरेंस आपके फंड्स को प्रोटेक्ट करती है एंड इन केस ऑफ एनी इवेंट जहां पे अपना पैसा लूज करते हैं आप इंश्योरेंस से क्लेम कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपका कॉज इंश्योरेंस ने कवर करा था। सो दिस इज हाउ एन इकोसिस्टम इज बिल्ट फॉर स्पेसिफिकली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब जिस तरीके से मैंने आपको इकोसिस्टम एक्सप्लेन करा उसी तरीके से अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। NFTs का अलग है, मेटावर्स का अलग है, लेयर वंस का भी थोड़ा थोड़ा अलग है एंड गेम फाइनेंस का भी अलग है। तो आप ये इकोसिस्टम्स को स्टडी कर सकते हैं एंड फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा इकोसिस्टम आपको सेंस बनाता है एंड किस में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यहाँ से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ओवर एस्टिमेट नहीं करना ह्यूज APRs के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको DeFi का सिस्टम बताया। काफ़ी सारे लोग अभी बेयर मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो 200% 500% APR भी देंगे, और ये प्रोजेक्ट्स को हम लिक्विडिटी ड्रेनर बोलते हैं क्योंकि ये सारी की सारी लिक्विडिटी आपसे खींच लेते हैं। ये प्रोजेक्ट्स बेसिकली काफी हाई रिटर्न्स तो प्रॉमिस करते हैं, बट ये रिटर्न्स होते हैं इनके नेटिव टोकन के अंदर, जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली डाउन जाती है, क्योंकि नेटिव टोकन ही लोगों को एज अ रिवॉर्ड मिलता है, तो वो लोग वही टोकन को बेचते हैं, और जब जो टोकन आपको रिवॉर्ड में मिला आप उसी को बेचोगे तो उसकी वैल्यू भी डाउन जाएगी ही जाएगी, एंड जब सेम टाइम पे हजारों लोग उस टोकन को बेच रहे हैं तो उसकी वैल्यू डाउन जाएगी। सिमिलरली ये जो फार्म्स होते हैं जो इतनी हाई APR APY देते हैं, यहाँ काफी हेफ्टी डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस भी होती है। ये विड्रॉल फीस और डिपॉजिट फी 2% से लेके 20% तक होती है, कईयों में हार्वेस्ट लॉकअप भी होता है, और बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स होते हैं जो एक लेमैन को या एक आम इन्वेस्टर को समझ नहीं आते, और इसकी वजह से लोग अपनी लिक्विडिटी और अपना पैसा लूज कर देते हैं। ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप बेयर मार्केट में पैसा लूज नहीं करते तो आपके पास ऑलरेडी एक अनफेयर एज है कि आप उस पैसे को और अच्छी जगहों पे एलोकेट कर सकते हैं एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के लिए इस एपिसोड का आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इसे ठीक से समझते हैं तो आपके पास एक काफी अनफेयर एडवांटेज होगा। इसको हम बोलते हैं इंप्रूव योर इन्वेस्टिंग फॉर्मूला। तो जब भी आप एक इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं आपके पास कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो मैं आपको क्विकली कुछ अपने पर्सनल इन्वेस्टिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बताऊंगा। ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को सुन के आप इसे एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले मेरा पहला रूल है इन्वेस्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट ऑफन। रूल 2, आई नेवर इन्वेस्ट मनी दैट आई एम नॉट ओके लूजिंग। तो मैं वही पैसा इन्वेस्ट करता हूं जो आज डूब भी जाए या जल भी जाए तो मेरी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। तीसरा, क्योंकि मैं एक सेमी एक्टिव मार्केट इन्वेस्टर एंड पार्टिसिपेंट हूं, मेरा बिहेवियर भी मेरे प्रोफाइल के हिसाब से अलाइनमेंट में रहता है। मैं खुद को अपडेटेड रखता हूं, प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ता हूं, अच्छी जगहों से नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करता हूं। रूल 4, मैं ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस ट्रेड्स या हाई APR APY प्रोजेक्ट्स को चेज नहीं करता। रूल 5, मैं हमेशा कुछ कैश या स्टेबल कॉइन पोजिशन रखता हूँ। रूल 6, मैं डू योर ओन रिसर्च यानी DYOR का एक फर्म बिलीवर हूँ। रूल 7, मैं खाली उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता हूँ जिनका वाइट पेपर मैं पढ़ चुका, टीम से बातचीत कर चुका एंड उस पे अपनी ड्यू डिलिजेंस कर चुका। रूल 8, मैं प्रॉफिट बुकिंग को लेके काफ़ी एक्टिव हूँ और मैंने एक प्रॉपर चेकलिस्ट बना रखी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। रूल 9, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इमोशंस में ना बहूँ, जैसे कि FOMO, ग्रीड या इवन हाइप। एंड फाइनली रूल 10, मैं कैपिटल प्रोटेक्शन को लेके बहुत ही एडामेंट रहता हूँ और बहुत ही स्ट्रिंजेंट रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कैपिटल लॉस्ट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क टू अर्न दैट बैक। तो इस वजह से मेरा इंटेंशन रहता है कि मैं कैपिटल लूज ना करूं, या करूं तो मिनिमम से मिनिमम करूं। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये 10 रूल्स बताए, आप अपने लिए ये 10 रूल्स के हिसाब से कुछ रूल्स क्रिएट कर सकते हैं और जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें तो ये रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। इस एपिसोड में हमने स्पेसिफिकली बात करी अपना मेटा क्रिएट करने के लिए। मेटा यानी अगेन मोस्ट एफिशिएंट टैक्टिक अवेलेबल। तो सबसे पहले हमने बात करी कि मेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हमने बात करी कि आप एक इकोसिस्टम या एक ओवरऑल सेक्टर के हिसाब से कैसे जज कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स लास्ट करेंगे। फिर हमने रूल्स की बात करी और हमने ये भी बात करी कि ह्यूज APR APY को चेस नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस एपिसोड से आप काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे, क्योंकि मैंने जो आपसे ये चीज़ें शेयर करी ये कॉमनली लोगों को नहीं पता होती और मुझे खुद सीखने में काफ़ी साल लगाने पड़े, एंड मैंने काफ़ी अलग अलग सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन गैदर करी, ये नॉलेज गेन करी एंड एक्सपीरियंस के साथ भी काफ़ी चीज़ें सीखी, और इन सबको कंपाइल करके आप लोगों से शेयर करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो मेरे हिसाब से तो ये सीरीज़ क्रिप्टो करेंट पॉडकास्ट की अभी तक की बेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि बेयर मार्केट इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न एंड ऑल्सो टू क्रिएट। और मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं ये पॉडकास्ट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वैल्यू ऐड हो, आप लोगों की हेल्प हो। एंड इस सीरीज़ में बचे हुए 2 एपिसोड्स में मैं और कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा जो आपको काफ़ी वैल्यू देंगी। तो मेक श्योर कि आप उन 2 एपिसोड्स को भी सुने एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में।
दिस वॉज एन HT स्मार्ट कास्ट ओरिजिनल HT स्मार्ट कास्ट।